તારીખ 27/9/1990 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 40 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ઈડરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 29
दो आत्माएं मुक्त हुई है, वे आत्माएं कुछ स्वच्छंद वर्तन से मुक्त नहीं हुई है और आत्मपुरुष द्वारा उपदेश मार्ग से प्रबल होने मैंने यहाँ कहने का अभिप्राय यह कि संसार में परिक्रमण करने वाली हरेक आत्मा अनादि से राग द्वेष मोह के बंधन में पड़ी हुई है और इस बंधन में से छूटने का मार्ग है, उपाय है। और वो जो मार्ग नहीं जानते जिस मार्ग से अनजान है, अनभिज्ञ है, वैसे मार्ग में अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचार के अनुसार जो चलते हैं वो स्वच्छंद वर्तन से चलते हैं। स्वच्छंद मैंने अपने मनमानी रीत से, ये अपने मनमानी रीत से काम होने वाला है। जिस चीज को जानी नहीं, देखी नहीं, समझी नहीं और अरूपी अगम अगोचर मार्ग जिसको कहते हैं
जी,
उस विषय में वो अपने मनमानी रीति से कोई काम करना चाहते हैं उसको स्वच्छंद कहते हैं। स्वच्छंद में भले ही शुभ परिणाम हो फिर भी वो स्वच्छंद, ऐसा नहीं है कि स्वच्छंद है वो अशुभ परिणाम ही हो, ऐसा नहीं। सही मार्ग को छोड़ करके और सही मार्ग पाने के लिए जो मार्ग के जानकार है उसी का चरण में जाने का विचार छोड़ करके अपने आप काम करना अपनी रीति से चाहते हैं, ये सब पसंद हो जाता है। फिर कुछ भी करते कितना भी शुभ हो, ये शुभ रहने वाला नहीं है, ये शुभ में से अशुभ में आने वाला है। क्योंकि ऐसे करते होते जीव को जो सच्चे देवगुरु और शास्त्र हैं सदगुरु है उसकी उपेक्षा और विमुखता अपने बिना नहीं, पर इससे बड़ा अशुभ मन, इससे बड़ा अशुभ मन है। इसलिए शुभाशुभ की बात नहीं लेकर के ये स्वच्छंद परिणाम है वो विराधना के परिणाम है, ऐसा देखना चाहिए। आचार्य भले इसमें शुभ हो, विराधन शुभ में भी विराधना हो सकती है और होती है बराबर। आराधना और विराधना के प्रकरण में काफी अंतर है,
इस बात को
हाँ
शुभ में भी विराधना
होती है वो पता नहीं चलता। हम तो अशुभ छोड़ दें शुभ करते हैं ऐसा मान लेते हैं, इसलिए धर्म करते हैं, ऐसा नहीं है। ये अपने रीति से कार्य करते हैं वो स्वच्छंद की रीति है, इसलिए इसमें शुभ होते हुए भी ये विराधक परिणाम है। छह सौ एक सौ प्रकार से जीव ने शास्त्र की मान्यता करके शास्त्र पढ़ता हूँ ऐसा मान करके कृतार्थता मैंने संतोष मानी है। तो मैं शास्त्र तो पढ़ता हूँ, आचार्यों का शास्त्र पढ़ता हूँ, यह सर्वशास्त्रीय अभिनिवेश है। मैं शास्त्र पढ़ता हूँ, यह शास्त्रीय अभिनिवेश है, एक अहंकार पैदा। स्वच्छता तो दूर अपने संबंध में विचार नहीं कर सकती, संसार के को परिक्रमण करने वाली आत्मा है। ये राग द्वेष और मोह के बंधन में ऐसी पड़ी है जो अपने स्वरूप के संबंध में विचार करने को सशक्त नहीं है, सक्षम नहीं है, योग्यता नहीं है। मनुष्यत्व, आर्य द्वेष, उत्तम कुल और शारीरिक संपत्ति ये अपेक्षित साधन है और अंतरंग साधन मात्र मुक्त होने की सच्ची अभिलाषा है। वहां तक तो फल पर आए थे, ये सच्ची अभिलाषा होने से ये जो अपेक्षित साधन है तो उसमें साहेब आते हैं। अगर ये सच्ची अभिलाषा नहीं रही, नहीं हुई, तो फिर ये मर्यादित साधन जो बाह्य साधन है वो साधन रूप में नहीं रहेंगे, तो साहिब रूप में कहलाएंगे भी। सक्ष साधन है जो मर्यादित साधन, मर्यादित सुख जो करे तो आदि भी पड़े, न करे तो गणना पा द्वारा मनुष्य पर सर्वोत्कृष्ट साधन है। पर क्या रे साधे तो અત્યારે 600 કરોડ મનુષ્યો છે, આપણે ત્યાં આવાગમન કરી શકીએ, ત્યાં 600 કરોડ રાઉન્ડ અબાઉટ 600 કરોડ એટલે 6 અબજ મનુષ્યો બધા મનુષ્ય પૂરું કરે છે ને, દેહાર છે, શરીર કુ અનુકૂળતા, શરીર શરીર ચલે જાતે कि अमूल्य ऐसा ज्ञान जीवन को व्यापार में रहना पड़ता है, त्रास होता है, कहीं को लिखता है कि ये अमूल्य ऐसा ज्ञान जीवन है, भीतर में ज्ञान की परिणति चलती है, उपयोग भी वैसा ही रहे, ये जीवन है, ज्ञान तो प्राण है। ऐसा अमूल्य ज्ञान जीवन संसार के प्रपंचों में बह रहा है, चल रहा है, ये बात में कितना विवेक है, कुछ विवेक नहीं है, विवेक ऐसा करते खुद के मूल्य ऐसा ज्ञान जीवन संसार के प्रपंच में, संसार के कार्य में चल जाता है, बह जाता है, निकल जाता है। हमारा जीवन को ज्ञान जीवन होना चाहिए, ऐसे ही ज्ञानमय जीवन परिणमन जीवन में परिणमन हो रहे हो, यही हमको हमें इष्ट है। कार्य के प्रपंच हमें अनुकूल नहीं, हमें हमारे लायक नहीं, ऐसे
करता
समझी लेवा जाए બીજા એક સમજી લેવાના. જયારે જ્ઞાની પુત્ર આપણું જીવન કેવી રીતે, એને તો પરિણતિ પણ છે, તો પણ પોસાતું નથી. અહીંયા વગર પરિણતિ આખે આખો ડૂબે છે અને દેહાર્થે જ સમય જતી થાય છે. વધારે ગંભીર છે વિચાર.
આજીવિકા માટે સારી ચિંતા, આજીવિકા સારી ચિંતા ને જ આપણે
મર્યાદિત ક્યાં રાખતો. સમજો તો બિના આજીવિકા ચાલને વાળા નહીં, તાકાત નહીં ચલાવી નહીં, અપની શક્તિ કે અનુકૂળ સાધન કરે છે. જો આટા તો સાધન હોઈ શકે તો ઉસકો મર્યાદિત ક્યાં નહીં રાખે. મર્યાદા મેં જો ગુના હૈ મર્યાદા મેં ભરોસો હો નહીં ભરોસો નહીં હો આખિર મેં તો પૂર્વ કર્મ કરે હોગા. કોઈ અપની ચિંતા સે જ્યાદા મિલ જાયગા યા અપના પુરુષાર્થ સે જ્યાદા મિલ જાયગા યે બાત તો હૈ નહીં. સંસાર મેં ભી યે તો દેખને મેં આતા કે હમારે સે જ્યાદા ચતુર હો, હમારે સે જ્યાદા મહેનત કરને વાલા હો, હમારે સે જ્યાદા સાધન સંપન્ન હો, ફિર ભી હમરે પીછે રહેતે હૈકા. મતલબ ક્યા પણ હમરા કમજોર હો હમરે આગે હો જાતે હૈ. એસા નહીં હો સકતા કે મારે મારે ગુલાબ આપશે આગે નહીં ચલે જાય. હમને સારા બુદ્ધિ તો જ્યાદા હમરે થી કાર્યશક્તિ ભી હમરે થી બહુ હમને કારોબાર ચલાયા એ તો હમ તો અનુસરણ કરતે થે ફોલો કરતે થે. ઇસકા મતલબ ભી હૈ કે વો આગે નહીં જા સકતે, વો આગે જા સકતે હૈ પીછે રહ સકતે હૈ. યે પૂર્વ કર્મ સે હોતા હૈ, જો હોતા હૈ તો પૂર્વ કર્મ સે હોતા હૈ. અબ તુમ ચિંતા કરકે કિતને ભી ડૂબો, ચિંતા મેં ડૂબ જાય તો ભી ક્યા. તો વાસ્તવ મેં તો એસા હૈ કે સહી ડિસિશન શાંત ચિત્ત સે જો લિયા જાતા હૈ વો અશાંત ચિત્ત સે નહીં લિયા જાતા. યે તો લોક મેં ભી પ્રસિદ્ધ હૈ કે જબ બહોત વિચાર મેં ચંચલતા ઔર તીવ્રતા આ જાતી હૈ તો કહેતે કે અભી કોઈ નિર્ણય નહીં કરના હૈ, કુછ શાંત હોકર કે વિચાર કરના હૈ. मैंने डिसीजन अगर ले जाएंगे तो अनहेल्दी हो जाएगा, हेल्दी डिसीजन लेना चाहिए. तो लौकिक दापन भी ऐसा चलता है. तो इसका मतलब ये होगा सिद्धांत भी ऐसा कि जितना चित्त शांत रहेगा उतना निर्णय भी योग्य होगा, जितना चित्त शांत रहेगा इतना निर्णय भी अयोग्य हो जाएगा. योग्य निर्णय से अपना हित होगा, अयोग्य निर्णय से अपना अहित होगा, नुकसान होगा. इस प्रकार यदि आत्मा में सुलभ बोधित्व की योग्यता आई हो तो वह जो पुरुष मुक्त हुए हैं अथवा वर्तमान में मुक्त रूप से या आत्मज्ञान दशा में विचरते हैं उनके उद्दिष्ट मार्ग में निसंदेह श्रद्धाशील हो. यदि इस प्रकार यदि आत्मा में सुलभ बोधित्व की योग्यता आई हो, ऐसा शब्द प्रयोग किया, बोध प्राप्त करने में सुलभता होवे ऐसी योग्यता आई हो उसको सुलभ बोधित्व की योग्यता कहते हैं. मैंने ये पात्रता वाली बात है, पात्र जीव को सुलभ बुद्धि करें, पात्रता है वहां सुलभ बुद्धि बना. ऐसा अगर कुछ हुआ हो, देश का अंगीकार करने की भावना तीव्र हुई हो तो उद्देश्य अंगीकार होगा. अगर उद्देश्य अंगीकार करने की भावना ही नहीं है तो उद्देश्य अंगीकार हो गई ना. जो ज्यादा जोर कर देने लायक कोई भूमिका है तो यही है, अनंत काल से खरी मनुष्यता आई है. आगे की राह चढ़ने का एक ही रास्ता है और भूलने का बहुत से, इसलिए चढ़ने वाला चढ़ने के पहले तो भूलने में चाहता और भटक जाता है। ये हमारे नजर में हम समाज के प्रति लेकर फिर ये बात उसके जीवन के दृष्टांत मिलेंगे कैसे कैसे लोग भटक गए। ये जीवन दृष्टांत लेंगे, ये रोल तो अपने को लेना है, इस पर हमारे हालत को कुछ ऐसी नहीं बनता। यदि आत्मा में सुलभ बुद्धित्व की योग्यता आई तो जो पुरुष मुक्त हुए हैं अथवा वर्तमान में मुक्त रूप से आत्मज्ञान दशा का ये दूसरा शब्द लिया है, आत्मज्ञान दशा में मैंने मुक्त रूप से जो विचरते हैं इसका नाम आत्मज्ञान है, इसको कोई प्रतिबंध नहीं। उनके उद्देश्य मार्ग में निःसंदेह शुद्धातिल को निःसंदेह शुद्धातिल शुद्धातिल वो कहते हैं निःसंदेह शुद्धातिल विकल्प करने का कोई जवाब आशंका होने का भी सवाल नहीं है। जिसमें राग द्वेष और मोह नहीं है वह पुरुष इन तीन दोषों से रहित मार्ग का उपदेश कर सकता है अथवा तो उसी पद्धति से निसंदेह रूप से आचरण करने वाले पुरुष इस मार्ग का उपदेश दे सकते हैं। उपदेश देना किसका अधिकार है ये बात बताइए कि जो पुरुष राग द्वेष और मोह रहित हुए हैं ऐसा जिसका आचरण हो उपदेश के है। ये बात चली थी कि उपदेशक किसी को नहीं बनना है, उपदेशक नहीं बनना है और बात जो कहनी है बतानी है वाचन करना है तो उपदेशक के टोन में नहीं आनी चाहिए, ये ध्वनि नहीं हो जाना। उपदेश लेने के टोन में ये बात नहीं चाहिए, आएगा तो शास्त्र में ऐसा उपदेश की बात आएगी और उसमें उपदेशक टोन भी आएगा फिर वहां क्या करेंगे, वहां ऐसा कहना कि ये महापुरुष ऐसे कहते हैं आचार्य महाराज ऐसे कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष ऐसे कहते हैं मैं कहता हूं वो बात आनी चाहिए। देखिए महापुरुष तो खुद उपदेशक नहीं बनेगा वरना उपदेशक का ध्वनि आ जाएगा तो उसको उपदेश लेना जो बाकी है उपदेश को अंगीकार करना बाकी है, ये रास्ता का दरवाजा ये विकास का दरवाजा तो जब होता है तब फिर पतन का दरवाजा खुल जाता है। एक दरवाजा हमेशा बंद रहता है जब एक खुला रहता है, दोनों कभी खुला नहीं रहता किसी के लिए, ये विचार करते हैं गंभीरता से विचार करते यानी पतन पतन में पतन का दरवाजा तो इनके लिए बंद है ना, एक विकास का है एक पतन का है तो दोनों दरवाजा तो किसी के लिए नहीं खुला रहता है। जिसने विकास का दरवाजा बंद कर दिया उसका पतन का खुल गया, तो जिसने विकास का खोल दिया उसका पतन का बंद हो गया, क्योंकि चाल तो एक दिशा में हो सकती है, एक आदमी एक साथ परस्पर दो विरोधी दिशा में कैसे चल सकता है कोई। पदर्शनों की शैली का विचार करने से राग द्वेष और मोह रहित पुरुष का उपदिष्ट निर्ग्रंथ दर्शन विशेष मानने योग्य है, उपदेश तो अन्य दर्शनों में भी चला है विभिन्न दर्शनों में और ये सभी दर्शनों की कथन पद्धति शैली मैंने कथन पद्धति का अगर विचार करने में आए तो एक निर्ग्रंथ दर्शन है जैन दर्शन नाम ने दिया, निर्ग्रंथ दर्शन दिया है, जिसको राजनीति ग्रंथि छेदी है। ऐसा जो निर्ग्रंथ दर्शन उस दर्शन उस दर्शन को विशेष मान्य योग है कि जिसमें राग द्वेष में रहित पुरुष का योग निश्चित निर्ग्रंथ दर्शन उपदेश दिया है, जिसमें राग द्वेष मोह को छेद करके निर्ग्रंथ जो हुए हैं, ऐसे निर्ग्रंथ गुरुओं ने इसका उपदेश दिया है। आपके साथ शास्त्र पर प्रश्न चला है, दुर्घटना पर है ना, आत्मज्ञान समदर्शिता धरे उदय प्रयोग पूर्ववाणी परम पुरुष सदगुरु लक्षण योग, इस पर प्रश्न चला है। इसके पर यह पत्र है, सदगुरु योग के ये लक्षण मुख्यतः किस गुण स्थान में संभव है, प्रश्न दो किया है। सदगुरु योग के ये लक्षण मुख्यतः किस स्थान में संभव है, दूसरा प्रश्न है कि हम दर्शिता किसे कहते हैं, तो सदगुरु उपदेश देने योग्य है इसलिए ये प्रश्न कराया है कि सदगुरु योग के जो ये लक्षण बताए हैं तो मुख्यतः विशेषतः उपदेशक अर्थात मार्ग प्रकाशक सदगुरु के लक्षण हैं। उपदेशक गुण स्थान छठा और तेरवा है, क्या कहा, छठा और तेरवा, शंकर देव परम गुरु है और छठे गुण स्थान में निर्ग्रंथ महाविराज है, वो गुरु है, गुरु और परम गुरु ये उपदेशक के दो गुण स्थान है। बीच के सातवें से बारहवें तक के गुण स्थान अल्पकालवर्ती है, अल्पकालवर्ती है और निर्विकल्प भी है, ये व्यवहार मोक्ष मार्ग में वहां नहीं है, वहां पर निश्चय मोक्ष मार्ग में है और छठे गुण स्थान में व्यवहार मोक्ष मार्ग है और केवली के दशा में तो निश्चय व्यवहार दोनों का उल्लंघन करके आगे हैं, निरीक्षण वाणी चलती है, इसलिए उनमें उपदेशक प्रवृत्ति का संभव नहीं है। छठे और तेरवे के बीच में तो उपदेशक प्रवृत्ति का संभव है ही नहीं, मार्ग उपदेशक प्रवृत्ति छठे से तो शुरू होती है, छठे से तो शुरुआत किया है, इसके पहला मार्ग का उपदेश नहीं दे सकता, अधिकारी नहीं, चर्चा करें प्रश्न करें बात करें सत्संग करें अलग बात है, उपदेश की बात नहीं, ये सत्संग है उपदेश की बात नहीं, से प्रारंभ कर देते आप जाएंगे दस लक्षण करो आचन करने को भेजते हैं तो आप तो उनके आसन पर बिठाएंगे, सुनने वाले नीचे आसन पर बैठेंगे, लेकिन ये मत समझ लेना कि उद्देश्य इस ऊंचे आसन पर बैठ गए इसलिए ये नहीं समझना है कि हम उद्देश्य, ऐसा कभी समझना नहीं है। ये तो समाज बड़ी होती है, पीछे वाले को भी बोलने वाले का हाव भाव चेष्टा दिख सके इसके लिए ये व्यवस्था है, दूसरी बात के लिए व्यवस्था हमने नहीं सोची, भले वो है ऐसा समझे कि ये हमको कुछ बात समझाते हैं इसलिए हमारे लिए आदरणीय है, इतना भी समझेंगे कि विद्वान है पंडित है और विद्वान समादरणीय होते हैं ये बात है, लेकिन ये श्रोता के लिए है, ये वक्ता के लिए नहीं बात है, न्याय अलग अलग है दोनों का, श्रोता कुछ भी करे लेकिन वक्ता के लिए ये बात नहीं, तो इसलिए वो आदर करेंगे तो भी उपदेशक बनने का जो अभिप्राय हो गया तो बात करेंगे, वहां से पतन चालू
श्रोता के लिए तो बहुत जरूरी है, उन्हें करिए चेष्टा है श्रोता के लिए तो,
हाँ श्रोता के लिए तो अपने अपने स्थान में तो उसको आदर करेंगे
सभी लोग, जरूरी है श्रोता और भाव विष्णु के लिए,
हाँ ये जरूरत
जरूर है और आवश्यकता
इसलिए तो ये व्यवस्था बताई गई है कि भाई जो बोलता है जाता है उसमें आदर का भी भाव है भले ही वो, लेकिन वो उनके लिए है,
हाँ
बैठने वाले के लिए सो बात नहीं है
तो श्रोता
तो ये छठे से उपदेशक प्रवृत्ति शुरू होती है। छठे स्थान में संपूर्ण विचार दिशा और केवल ज्ञान नहीं है, अर्थतम संचर क्या करते हैं तो छठे स्थान में संपूर्ण विचार दिशा और केवल ज्ञान नहीं है, ये तो तेरहवें में है और यथावत मार्ग उपदेशकत्व तेरहवें गुण स्थान में रहने वाले संपूर्ण विचार और केवल संपन्न परम श्री जीन तीर्थंकर आदि में कहता है, आदि में दूसरे के लिए आ जाते हैं तीर्थंकर से सुधार लेते हैं केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसमें केवल दो प्रकार के होते हैं, एक मुख केवल होते हैं जो मनुष्य के बीच में आते हैं और फिर उनका डर हो जाता है, इसलिए आगे चल दिया इसलिए तीर्थंकर की बात नहीं लिया कि मार्ग उपदेशकत्व तेरहवें गुणस्थान में रहने वाले संपूर्ण वितराग और केवल के संपन्न परम श्री जी तीर्थंकर आदि में करता है, ये तीर्थंकर आदि वाले उपदेशक करता है उस दशा के लिए जिसका प्रवर्तन और पुरुषार्थ है, की प्रवृत्ति भी है और पुरुषार्थ भी है, जो उस दशा को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ, जो उस दशा को संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है तथापि उस संपूर्ण दशा प्राप्त करने के मार्ग साधन को स्वयं परम सद्गुरु श्री तीर्थंकर आदि आप पुरुष के आश्रय वचन से जिसने जाना है प्रतीत किया है अनुभव किया है और उस मार्ग साधन की उपासना से जिनकी वह दशा उत्तरोत्तर विशेष अति विशेष प्रकट होती जाती है उस सदगुरु में भी मार्ग का उपदेशकत्व अवरुद्ध है। अब दूसरी बात क्या कहते हैं फिर से तथापि छठे स्थान में रहने वाले मुनि जो संपूर्ण वितरागता और केवल दिशा का उपासक है पहले तो वो केवल दिशा के उपासक है, मुख्य कार्य तो वो करते हैं जिसका मुख्य कार्य नहीं है उनका भी उनको तो केवल प्राप्त करने का मुख्य प्रयोग है इसलिए दीक्षा ली है, उपदेश देने के लिए दीक्षा नहीं ली, उस दशा के लिए जिसका प्रवर्तन और पुरुषार्थ भी है केवल के लिए जो उस दशा के संपूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ है केवल दशा को प्राप्त नहीं है तथापि उस संपूर्ण दशा प्राप्त करने के मार्ग साधन को स्वयं परम सद्गुरु श्री तीर्थंकर आदि महा आत्म पुरुष के आश्रय वचन से जाना है प्रतीत किया है और अनुभव किया है श्री जी ने ऐसे कहते हैं तीर्थंकर ऐसे कहते हैं विनेन्द्र देव ऐसे कहते हैं ऐसा बात क्यों ये संकेत है कि भले ही हम निर्गम दशा में आए हैं फिर भी हम इनके मार्ग पर चलने वाले हैं, स्वच्छंद से कोई बात हम नहीं कर रहे इनकी आज्ञा में रहकर के ये सब बात कर रहे हैं ऐसा। अरे आप आत्म पुरुष के आश्रय वचन से जिसने जाना है प्रतीत किया है और अनुभव किया है और उस मार्ग साधन की उपासना से जिसकी वह दशा उत्तरोत्तर विशेष अति विशेष प्रकट होते जाते हैं एक संस्थान में भी आगे बढ़ते जाते हैं उस सदगुरु में भी मार्ग का उपदेशक तत्व अवयुक्त है उसको दोष नहीं है उपदेश देने में और रूपा जाए तो आत्मिका गुरु का ही फल है शिक्षा दीक्षा देते हैं उन सब काम होता है तो गुरु बदलेंगे बिल्कुल उसके नीचे के पांचवे और चौथे गुण स्थान में मार्ग उपदेशकत्व प्राय नहीं घटता, पांचवे में भी नहीं घटता, चौथे दिन में भी प्राय नहीं घटता है, किसी को ऐसा योग होता है जैसे गुरुदेव के संपत्र ऐसा ही योग था, गृहस्थ स्वीकार नहीं करते ऐसा योग होने से, जैसे साधु पड़ा तो छोड़ दिया ये खाने पासी का, लेकिन शादी नहीं की, छोटी उम्र से 21 साल की उम्र में मैंने दीक्षा ली थी और 2 साल में देखा कि ये तो गड़बड़ है, सब भारतवासी में गड़बड़ है, शास्त्र पढ़े सीतांबरम के 45 आगम पढ़े, पता नहीं चला कि गुरु सारे दिन आए उसका काफी अध्ययन किया, तो मैंने सुने समझता हूँ कभी 10-11 साल की करके लिए 8 साल का दिशा में 8 साल 8 साल में ये ध्यान मिल गई 21-29 साल की उम्र में ये सारा काम छोड़ने का मैंने कर लिया था, फिर 3 साल और निकल गए, 13 साल और निकल गए, फिर 13 साल निकल गए, क्योंकि विचार ये हुआ कि हम क्या करें, कहते थे हमको कि सचिव भाई हमको यहाँ तक नहीं डूबे हुए थे, माथा बूढ़ पानी में थे, हम क्या करते थे, मैंने बाहर गला रह जाए तो तैरने के लिए बाहर निकल के लिए कुछ कोशिश करें, लेकिन हमको माथा बूढ़ पानी में इतने डूबे हुए संप्रदाय में तुम्हें मान सम्मान नहीं कर सकते, वो भगवान की तरह उसको पूछते थे, उस वक्त वो निकल गए वहां से, तो नहीं ये नहीं किया तो मार्ग जब इनका इरादा हो तो मार्ग का उपदेश करना, अगर ये इरादा नहीं होता तो फिर अपना साधन ही करना है, तो शायद शादी भी कर लेते तो उसमें कोई जरूरत नहीं है, हो सकते हैं ग्रेस्ट उन्होंने पसंद नहीं किया, तो ब्रह्म उस जाति का था उपदेश करने का एक अभिप्राय था, कोई झंझट में नहीं पड़े, न कोई व्यापार कारोबार में पड़े, अपने खुद के दुकान से हुए थे तो कुछ इसमें भी नहीं लगे, पर घर में जाने का विचार बड़े भाई को बोला कोई बात नहीं है, अन्य भाई को आ जाना घर पर, हमारे यहाँ भगवान की कृपा से कोई रोटी की तो तकलीफ नहीं है, छोड़ देना बाटवा लेकर के जाना है घर घर पर, छोड़ दो अगर तुमको ये बात सही नहीं लगती है भिक्षा की याचना छोड़ो आ जाओ घर पर, तुमको कुछ नहीं करना है ऐसा भी बोला था, अगर तुमको निवृत्ति में जीवन रखना है तो तुम अपने कमरे में बैठे या छत पे चले जाओ और ऐसे करो अपना ज्ञान ध्यान करो, पूरा उनका जो सपोर्ट था विशाल भाई का वो पूरा था, पूरा था वो घर पे भी नहीं आए, और समाज ने तो समाज छोड़ने की बात लेने कर दिया कि सारे समाज को छोड़ देना, ये समाज हमारे लायक नहीं है, ऐसा करके समाज को छोड़ दिया, थोड़ा सा तो उसमें निकले, तो उसके नीचे के पांचवें और चौथा गुण स्थान में मार्ग उपदेश तत्व प्राय नहीं होता, बहुत कठिन नहीं होता है, क्योंकि वहां बाह्य ग्रस्त व्यवहार का प्रतिबंध है, और बाह्य अवृत्ति रूप ग्रस्त व्यवहार होते हुए वृत्ति रूप मार्ग का प्रकाशन करना यह मार्ग का विरोध रूप है, लिखा कहता है मार्ग का, मार्ग जो सुंदर है स्वरूप है वो पुरुष बन जाता है, खुद को तो बात करता है पूर्ण मित्रता की, उसका रात को देखो तो ये चाहिए उसको वो चाहिए उसको ये भी चाहिए उसको ये भी चाहिए, उनको सब रात बन जाता है, तो उसका जो रूप है लिखा हुआ है वो इसलिए कहते हैं कि उसको मार्ग उपदेशक नहीं बनता है, चौथे से नीचे के गुण स्थानक में तो मार्ग का उपदेशक पर घटता ही नहीं, प्राय नहीं घटता ही नहीं ऐसा, क्योंकि वहां मार्ग की आत्मा की तत्व की ज्ञानी की पहचान प्रकृति नहीं है और सम्यक वृत्ति नहीं है। कुछ जागे हो सकते हैं लेकिन सम्यक वृत्ति मां नहीं है। कुछ जागे हो जाते हैं गृहस्थ नहीं रह करके जागे हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो देश के अधिकारी हो जाते हैं। और यह पहचान प्रकृति और सम्यक वृत्ति न होने पर भी उसकी प्रलोभना करना निश्चित होना यह प्रगट मिथ्यात्व कुंभूपन और मार्ग का विरोध है। इतना साफ किया है आर्टिकल ने इसका उद्धरण किया है। मानचंदार कैसे होने चाहिए पहले ये रखा है, बाद में इसकी नीति नियम कर लिखे। तो फिर भी जब गुरुदेव की आज्ञा है और सत्पुरुष की आज्ञा के अनुकूल हमें उसकी कही हुई बात का प्रचार प्रदान करना है और संजोग साध्य करना आवश्यक भी है, तब हमें कितनी सावधानी
बाह्य व्यस्त मुनि
देखा बाद ना देखा उन्होंने प्रश्न छे क्या सब दर्शनों की शैली का विचार करने से राग द्वेष मोह और मोह रहित पुरुष का उपदिष्ट निर्ग्रह दर्शन और इसकी शैली विशेष मानने योग्य है क्योंकि ये उत्कृष्ट भी है। मानने योग्य इसलिए है कि ये उत्कृष्ट भी सभी दर्शनों से इनकी शैली की कोटि में उच्च कोटि है। इन तीनों दोषों से रहित महाअतिशय से प्रतापी तीर्थंकर देव ने मोक्ष के कारण रूप जिस धर्म का उपदेश दिया है उस धर्म को चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हैं परंतु वह एक पद्धति से होना चाहिए यह बात निशंक है। देखिए पद्धति बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। ये बात क्या है इन तीन दोषों से रहित मैंने राग द्वेष और मोह वहां अतिशय से प्रतापी श्री तीर्थंकर देव ने मोक्ष के कारण रूप जिस धर्म का उपदेश दिया हो दिया है उस धर्म का धर्म को चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हो। ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि जैन कुल में जन्म हुआ हो उसको ही उस धर्म को अंगीकार करे स्वीकार करे ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो वैष्णव देव का तो ये प्रसिद्ध दृष्टांत है कि वो अभी मत से आए और तिरिज भी इसका धर्म तो अंगीकार करते हैं स्वीकार कर सकते हैं। सबका स्वीकार करने में तो तीनों गति में किसी को भी पाबंदी वो शरण में नहीं है। तो जो भी ग्रहण करे एक पद्धति का एक ही पद्धति से परंतु वह एक पद्धति से होना चाहिए यह बात निशंक है। पद्धति बदलना ये बात इसका मतलब ये होता है कि अभी जो संप्रदाय अलग अलग जैन के हो गए ये अनेक पद्धति के हो गए हैं ये 21वीं साल में ये बात के सिद्धांत को स्थापित कर दिया है। कई साल में नहीं किया इसके पीछे 21 साल में ये बात लिखी है। भगवान के मार्ग की और उपदेश की पद्धति एक ही होनी चाहिए उसमें दो पद्धति हुई नहीं सकती। बधाई तो इसमें के साथ में बैठ करके कौन सी पद्धति भगवान की कही हुई है उसका निर्णय करें उसका निश्चय कर लें और दूसरी बात छोड़ दें। इस पद्धति को छोड़ करके दूसरी पद्धति में जाना उसका नाम कदाग्रह है उसका नाम मताग्रह है। ये बात संकेत
घना ठिकाने संकेत घना ठिकाने मारे
विश्व में नो जैन नहीं है, एक ही जैन हो सकता है। इसलिए चाहे जो मनुष्य स्वीकार करते हो धर्म का देश का, परंतु वह एक पद्धति से होना चाहिए, यह बात अनेक पद्धति से अनेक मनुष्य उस धर्म का प्रतिपादन करते हो। अब कहते हैं कि अनेक पद्धति से अनेक मनुष्य उस धर्म का प्रतिपादन करते हो और वह मनुष्यों में परस्पर मतभेद का कारण होता हो, ऐसी परिस्थिति में आपस में मतभेद का कारण होता हो, तो उसमें तीर्थंकर देव की एक पद्धति का दोष नहीं है। भगवान का दोष पद्धति प्रसिद्ध कर ली कहकर के बता करके चले गए, इसका तो कोई दोष नहीं है, परंतु उन मनुष्यों की समझ शक्ति का दोष माना जा सकता है जिसने दूसरी पद्धति निकाली, उसका दोष माना जा सकता है। बहुत साफ विचार है शुरू से ही। इस तरह हम निर्ग्रंथ धर्म प्रवर्तक है, इस तरह हम निर्ग्रंथ धर्म प्रवर्तक है, ये भिन्न भिन्न मनुष्य कहते हो और सभी कहते हो कि हम भी निर्ग्रंथ प्रवर्तक है, हम भी निर्ग्रंथ धर्म प्रवर्तक हो, निर्ग्रंथ धर्म प्रवर्तक है, तो उनमें से उन मनुष्यों को प्रमाण बाधित गिना जा सकता है कि जो वितराग देश की आज्ञा के सर्वनाश है प्रवर्तक है, ये भिन्न भिन्न पुरुष कहते हैं वो, तो उनमें से कहने वालों में से उन मनुष्यों का प्रमाण अबाधित गिना जा सकता है, ऐसा सभी कर दिया है प्रमाण अबाधित, मैंने प्रमाण अबाधित किया जा सकता है, गिना जा सकता है, गिनना चाहिए जो वितराग देव की आज्ञा के सद्भाव से प्ररूप और प्रवर्तक हो, जो आज्ञा पे चलने वाले हैं वे ही प्रमाण से अबाधक है। देखो तो प्रमाण किसको करना है और प्रमाण का बाधक किसको कहना है, इसकी चर्चा करनी है। भगवान की आज्ञा में चलने वाले अबाधक है, इसका प्रमाण बाधक नहीं गिना जा सकता, क्यों भगवान की आज्ञा को तोड़ते हैं इसको हम बाधक कहेंगे। काल दुष्ण नाम से प्रख्यात
जन्म
मार्ग से दूसरा मार्ग निकालना नहीं,
मार्ग का प्रमाण अबाधित
सप्रमाण विचार काल दुष्ण नाम से प्रख्यात, दुष्ण काल उसे कहा जाता है कि जिस काल में मनुष्य महादुख से आयु पूर्ण करते हो, करीब करीब लोग बहुत दुखी और धर्म आराधना के पदार्थों को प्राप्त करने में दुष्णता आते, ये काल में तो विघ्न आएगा आएगा और आएगा ही। वितराग देव के नाम से जैन दर्शन में इतने अधिक मत प्रचलित है कि वे मत केवल मतरूप है, परंतु जब तक वे विकराल देव की आज्ञा का अवलंबन करके उनका प्रवर्तन न होता हो तब तक वे शत्रु नहीं है, कभी जा सकते। सभी को ले लिया, सभी को इसमें ले लिया। तो इस काल में इस समय विकराल देव के नाम से जैन दर्शन में इतने अधिक मत प्रचलित है, बहुत मत प्रचलित हो गए हैं। तीन चार तो कम है, लेकिन एक में भी दो है, एक में भी दो है, गुम्बद में भी दो हो गए। तो क्या है, वो भक्त हो गया है, सब नहीं रहा, महाज्ञानी नहीं होने से वो मत हो गया, सत नहीं रहा, मगर बड़े हो जाए केवल प्रचलित गण मत, केवल मत रूप है। क्या करते हैं वो लड़ाई करते हैं, हमारे दिगंबर में ये हमारे दिगंबर में ऐसा
लड़ाई आज्ञा की चाहे तो क्या
मानेगा ही नहीं, उसको तो निकाल देगा। भाई आप देखो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में एक आदमी प्रमाणित हो उसकी क्या हालत है, एक हालत जो प्रमाणित है उसकी क्या हालत है। तो दूसरे लोग कहते हैं कि इसकी बदली कराओ, इसको इधर मत रखो। दूसरी जगह जाता है तो वो लोग कहते हैं कि इसको इधर मत रखो, उसको वहां रखो।
कारण तो समझे
हैं, उनको भी पता है कि हमारी दुकानदारी चलने वाली नहीं है, इसके आगे हमारी दुकानदारी नहीं चलेगी, वो भी समझते हैं, उनको निकालना चाहिए।
उसको कहीं कहीं फंसा देते
हैं,
मैंने कहा कहीं कहीं फंसा देते हैं,
फंसा देना क्या, हम उसको मार देते हैं, मारते हैं, चक्कर करता है, हमारा पैसा जाता है, इसमें हमारा बंदा चला जाता है, मारते हैं। ये हालत है आज के जमाने में, ये हालत
अरे एक करोड़ जैनी कहवाता हो, एक ज्ञानी विद्यमान हो, तो एक करोड़ कहवाता जैन नो फर्ज
है
ना, अनुसार आप कह सो जैन मार
किसी
का ही
है, ये मार का डिसिप्लिन है।
अगर कई समय कोई ऐसा काम हुआ जीवन गमे कैसे काम हो
गमे तो सकता
है रीते
संभव नहीं, कसम में इतना फाला फुला है, ये कोई संभव किसी को कोई सुने नहीं, किसी को कोई माने, लेकिन कोई बात करी थी कि अगर दिगंबर संप्रदाय में अगर ये लोग समझ इतना समझते बाहर दृष्टि से कि हमारी ताकत बढ़ती है, हमारा धर्म प्रभाव बढ़ता है, हमारा संप्रदाय बढ़ता है, हमारे धर्म की संपत्ति बढ़ती है, हमारे धर्म का वैभव बढ़ता है, क्योंकि इन लोगों की संख्या शक्ति समय बहुत बड़ी तादाद में आने वाली थी, तो उतना भी विचार जो लोग नहीं कर सके वो क्या क्या कर सके, बाह्य दृष्टि से जो लोग विचार नहीं कर सके, एक असावन नहीं थी आप लोग इतना विचार, हमने अपने बड़े बड़े मंदिर देखे, उन्होंने करोड़ों रुपये डाले, बड़ी बड़ी पत्तियां रखी, ये सब करते हैं, इतनी संख्या में अजैन सब जैन हुए, दिगंबर हुए, जब संख्या बढ़ती है वैभव बढ़ता है, समय शक्ति सब बढ़ता है, तो उनको सामान्य बुद्धि का प्रयोग
क्रिश्चियन
क्रिश्चियन की बात क्या है, क्रिश्चियन ऐसे बना दे रहे कि किसी को क्रिश्चियन होना हो, दरिद्र हो तो उनको पैसा दे देते हैं, उनको धंधा दे देते हैं, उनको खाने का बना देते हैं, सब आज हर भावनगर के नगर में ये गांव में सारा गांव क्रिश्चियन है, धर्म पता करते रोकना उनको सपोर्ट करते हैं, उनका उनको आदर करते हैं, काल ही ऐसा है कि तीर्थंकर का मार्ग है, वो दिन क्षय और क्षय छोटी भी लागू हुआ है, वो क्षय होते हैं, आपस में लड़ाई, हर क्षेत्र के गांव में एक मंदिर हो, एक मंदिर हो, वहां लड़ाई, पूरा समाज हो उसमें लड़ाई, इसका बड़ा इसमें लड़ाई, संप्रदाय में तो लड़ाई, महासभा वाले तो लड़ाई, लड़ाई 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 पूरे से ऊपर से नीचे तक लड़ते ही आ रहे हैं। तो आपस में ताकत जमा देते हैं, अंदर लड़ाई करके ताकत को नहीं खत्म करते, तो डेवलपमेंट होने का तो कोई जगह नहीं रहा है। ना कारण की क्षेत्र बाहर का आक्रमण तो हम पहुंच सकते हैं, लेकिन अंदर का आक्रमण है यही हालत यही है। ये आज साल दो पच्चीस पचास साल का ये सिलसिला नहीं है, ये पच्चीसों साल का सिलसिला ही है। भगवान महावीर स्वामी के बाद यही सिलसिला धर्म आराधना के पदार्थों को प्राप्त करने में विषम का आत्मा भाव ही होता है।
धर्म आराधना ना साधन है सत्पुरुष और
सत्सत्व सत्पुरुष और सत्कार्यो जो होते हैं प्रतिष्ठा में वाला लाते हैं, शास्त्र को जला देते हैं, मार देते हैं। इस समय विकराल नियम के नाम थे, जैन दर्शन में इतने अधिक मत प्रचलित हैं कि वे मत केवल मतरूप है, परंतु जब तक वे विकराल नियम की आज्ञा का अवलंबन करके उनका प्रवर्तन न होता हो तब तक वे शत्रुप नहीं कहा जा सकते हैं। मतरूप केवल है, शत्रुप इस प्रवर्तन में मुझे इतने मुख्य कारणों की संभावना देखिए चार से क्या बात है, ऐसा होने में मुख्य मुझे क्या बात है, कैसे कैसे बात है, आज बातें लिखी कि अपनी शिथिलता के कारण कितने ही पुरुषों ने दृग्रंथ दशा की प्रधानता कम की हो। यहाँ से प्रारंभ किया ये जो शिथिलाचार का हुआ है, यहाँ से ये बात तो ये एक में से 507 हुए लेकिन खुदाचार्य उल्लेख किया पावन में इस विषय का, यहाँ से प्रारंभ हो गया शिथिलाकार से। तो जो अंतर बाह्य निर्गत दशा में चाहिए गुरु की गुरु की दशा में पर क्या पहला कारण हो जहाँ से प्रारंभ हुआ कि कितने ही पुरुषों ने निर्ग्रंथ दशा की प्रधानता कम की हो, सग्रंथ दशा में आ गए, ग्रंथ ने त्याग छोड़ दिया, ग्रंथ के आगे तो निर्ग्रंथ की प्रधानता कम हो गई, उनको माना नहीं, उनको स्वीकारा नहीं, उनकी आज्ञा में गए नहीं। परस्पर दो आचार्यों का वाद विवाद हुआ अंदरों अंदर, ये लड़ाई अंदर की हो गई, हम कहते हैं हम कहते वो सही है, देखो ये शास्त्र में ऐसा प्रमाण है, देखो हमारे शास्त्र में ऐसा प्रमाण है, शास्त्र में तो दिखाने का दांत है, चबाने का तो अलग ही है, तुम लड़ाई करते हो दिखाने का छोटे दांत पर लड़ाई करते हो, जो काम में आने वाले नहीं है उस पर तो लड़ाई करते हो, चबाने के दांत ही अलग है वो तो जानते नहीं। और ऐसे ऐसे दुर्द लोग जैसे कोई जिसको नेत्र है वो कहते हैं कि आकाश में 15 पंखी पक्षी चर रहते हैं, तो वो अंध है एक को भी नहीं देख रहे, बोलते हैं नहीं तेरा है 15 नहीं है, तो उसका क्या कहते हैं। तो वो अगर ऐसा कहे कि मैं बिल्कुल जानता नहीं हूँ, मेरा अनुमान है जब तक, लेकिन 15 नहीं है 13 का मतलब ये है क्या कि वो कोई समझ जान बुझ कर समझ कर बोलता है, तो तीसरे आदमी को क्या पता चले कि 13 वाला सही है और 15 वाला सही है, ऐसी गड़बड़ी चलती है। ऐसे जो आत्मज्ञानी थे सन्मार्ग में आए हुए थे, सन्मार्ग जिसको अनुभूत हुआ था, नहीं ऐसा नहीं है वैसा भी है, जो भले लोग हैं जो समझते नहीं जानते हैं वो जल्दी चालू होगी, उनके पक्ष में कुछ नहीं है, उनके पक्ष में रहेंगे एक से दो। परस्पर आचार्य का विवाद, मोहनीय कर्म का उदय और सदरूप प्रवर्तन हो जाना आपने से ये मोहनी की बात किया है। दंशन पट्ठा सिजंती, करित भट्ठा पट्ठा सिजंती, दंशन पट्ठा न सिजंती, ये दर्शन प्रश्न दर्शन मौके आवरण आने से सारे सिद्धांत में दो बात है। मोहनी कर्म का उदय और सदरूप तदनुरूप प्रवर्तन हो जाना, ग्रहण करने के बाद उस बात का मार्ग मिलता हो तो भी उसे दुर्लभ गोलिता के कारण ग्रहण न करना, ग्रहण करने के बाद उस बात का मार्ग मिलता हो, इसका मार्ग यही है कि न मिले हुए थे तो भी वो बारह नहीं करता, वो कदागर चल रहता है, हमारा मार्ग कौन छोड़े, हमारे बात को छोड़े मती के नियम का मती भी इसमें नियम हो जाती है कि अपना ही दलित को नहीं देना, जिस पर राग है उसकी इच्छा अनुसार प्रवर्तन करने वाले गुण के अनुसार नहीं राग के अनुसार भगवान को कैद पर रखे, जिस पर राग हो उस पर नीचे रखे, ये है ये भी मार्ग आपत्ति रूप है। दूषण काल विकाल दूषण चित्र चित्र विचित्र परिणाम हमारे बहुत होते हैं, और शास्त्र ज्ञान का कर जाना, शास्त्र ज्ञान भी घटता ही जा रहा है, दुनिया को बहुत कंठस्थ अंग पूर्वक का कंठस्थ ज्ञान रहता था, सभी बात घटती जा रही है, कम होने जा रही है, इन सब मतों के संबंध में समाधान होकर निशंकता से वीतराग की आज्ञा के अनुरूप मार्ग प्रवर्तित हो तो महाकल्याण हो, परंतु ऐसी संभावना कम है, उनके सामने एक नहीं है भोगना प्रतिमा से दिन में
अच्छा
उड़ाता है स्थानक वासी को बेचारे को क्या कहें, समझने वाले को कितने क्यों में रख देते हैं, दूर बात आप तो शंका नहीं रहता, निशंक स्थापित हो जाए अपने यहाँ से
बात
और सुलभ बुद्धि और दुर्लभ बुद्धि की चिंता तो बार बार कहते हैं, ये बात है सुलभ बुद्धि को नहीं चाहिए, दुर्लभ बुद्धि का काम करने वाला इन सब मतों के संबंध में निशंकता से विद्रा की आज्ञा के अनुरूप मार्ग प्रवर्तित हो तो महाकल्याण हो, परंतु ऐसी संभावना कम है, परिस्थिति हम कम है, जैसे जिसे वृक्ष के विलासा है उनकी प्रवर्तना तो उसी मार्ग में होती है, वृक्ष के अभिलाषी तो मार्ग में ही प्रवर्तना होगी, परंतु लोक अथवा ओग दृष्टि से, लोक दृष्टि से अथवा ओग दृष्टि से, इसके साथ से मैं चल गया, लोक दृष्टि से अथवा ओग दृष्टि से प्रवर्तन करने वाले पुरुष और पूर्व के दुर्गत कर्म के उदय के कारण मृत्यु सदा में पड़े हुए मनुष्य उस मार्ग का विचार कर सकें या वो ले सकें ऐसा उनके कितने दुर्लभ बुद्धि गुरु करने दें, ऐसा उनके कितने दुर्लभ बुद्धि गुरु करने दें और मतभेद और मतभेद दूर होकर परमात्मा की आज्ञा का सम्यक रूप से आराधन करते हुए अनुगतवादियों को देखें, यह बहुत असंभव है। उसको देखते हुए ये बहुत असंभव, इतने कारण है और ये आठ कारण दिए कभी भी कहते हैं कि लोक दृष्टि से बहुत समाज में ज्यादा लोग और लोक दृष्टि से लोगों में अपना क्या होता, लोगों में क्या लोग क्या है, ज्यादा लोग तो ऐसा मानते हैं, ज्यादा लोग तो ऐसा चाहते हैं, समाज को ऐसा क्यों चाहते हैं। ये लोक दृष्टि और ओम दृष्टि से प्रवर्तन करने वाले पुरुष हैं और पूर्व के दुर्घट कर्म के बुद्धि के कारण मत की श्रद्धा में पड़े हुए पुरुष हैं, अपना संप्रदाय वृत्ति जिसको कहते हैं, इस बात का वो विचार कर सके तो गुरुदर्श कहता संभव नहीं है और असंभव मैंने संभव नहीं। और ऐसा उनके कितने दुर्लभ बुद्धि गुरु करने दें, ये भी संभव नहीं है। ये गुरु को एक विशेषण लगाया दुर्लभ बुद्धि गुरु है, इनके जो नजदीक आने वाले इनके बाबत हो गए करने नहीं देंगे, ये भी करने दें वो भी संभव नहीं है। और मतभेद दूर होकर परमात्मा की आज्ञा का सम्यक रूप से आराधन करते हुए उन मतवादियों को देखें, ये बहुत बहुत असंभव है, थोड़ा असंभव नहीं है, बहुत प्रकाशन का अंतर कई बार आया है, चारों ओर देख लिया है। हमारे प्रकाशन में कितनी बाधा है, बाधाएं इस काल में हो सकती है, बहुत देखना बहुत विचार
गजब करें, कोई फर्को बाकी नहीं है, कोई चीज बाकी नहीं है।
सब में एक सी बुद्धि प्रकट होकर उसका संशोधन होकर गीत राग की आज्ञा के अनुरूप मार्ग का प्रतिपादन हो, यह यद्यपि सर्वथा असंभव जैसा है। सभी परिस्थिति यद्यपि सर्वथा असंभव जैसी है तो भी सुलभ बुद्धि आत्माएं अवश्य उसके लिए प्रयत्न करती रहें तो परिणाम श्रेष्ठ आए, ये बात मुझे संभव लगती। क्या क्या जो लोग सुलभ बोलते हैं उनको एक स्थान मिले, वो अगर इकट्ठे हो तो कुछ बात का उपयोग कुछ नहीं बात
तीनों प्रकार के सुलभ बोलते
जो सत्य के साथ है उसको अपना हित ही करना हो और आज्ञा के बाद जिसको जाने का बिल्कुल पसंद नहीं हो, सिद्धांतिक तौर से जाना ही नहीं चाहते तो भगवान की आज्ञा पर ताज्ञे रखना है। ऐसे सुलभ बुद्धि लोगों को अगर ऐसी आत्मा की आत्माएं ऐसे आत्माएं एक साथ होकर के इसके लोग कोई प्रयत्न करती है, प्रयत्न करें नहीं प्रयत्न करती रहे चालू तो उसका परिणाम श्रेष्ठ आ सकता है। ये बात तो उसका मतलब ये बात कि अभी भी इस काल में कुछ आत्माएं सुलभ होती हैं, कुछ आत्माएं ऐसी हैं कि जो भगवान के मार्ग को छोड़ना नहीं चाहते, आत्माओं को साथ होकर के बदलने वाले नहीं है, वो तो अड़ गए छोड़ गए नहीं, तो बात सही है तो भी हमको हमारे हमको तो नहीं चाहिए, तो लाइन नहीं